हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अबीर कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहा, तब ज़ोया अपने अतीत से बाहर आई और अपनी आंखों से निकले आंसुओं को बेरहमी से रगड़ने लगी। ज़ोया ने महसूस किया कि उसके आसपास अत्यधिक खामोशी थी। उसके बाद वो उठी और देखा कि रिया, जो उसके बराबर में बैठी थी, अब वहां नहीं थी। ज़ोया हैरान रह गई और सोचने लगी कि अकरम भाई और रिया उसे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे। वो उठी, अपना दुपट्टा सही किया और पीछे मुड़ी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वो हैरान रह गई। ज़ोया की नज़र पीछे हटते ही अबीर राठौड़ पर पड़ी, जो घुटनों के बल सर झुकाकर बैठा हुआ था। अबीर को इस तरह बैठा देखकर ज़ोया के दिल में एक टीस सी उभर आई। वो सोचने लगी कि जब पहली बार अबीर राठौड़ से उसकी मुलाकात हुई थी, अबीर कितना एटीट्यूड, रौब और घमंड वाला आदमी था, जिसको अपने सामने किसी का उठा हुआ सर भी पसंद नहीं था। लेकिन ये क्या, आज अबीर राठौड़ सर झुकाए हुए बैठा हुआ था। और जैसे ही ज़ोया ने उसकी आंख से कुछ आंसुओं की बूंद जमीन पर गिरते हुए देखी, ज़ोया तड़प कर रह गई। वो अबीर के पास जाकर उसके ठीक सामने खड़ी हो गई। ज़ोया ने कुछ देर अबीर को ऐसे ही बैठे हुए देखा और उसके सामने वो भी घुटनों के बल बैठ गई और अबीर राठौड़ से बोली, मिस्टर राठौड़, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? देखिए राठौड़ साहब, मैं जानती हूँ कि आप मेरी शक्ल सूरत देखकर मुझे पसंद करने लगे थे या फिर शायद मोहब्बत भी कर बैठे थे, लेकिन अबीर साहब, आज जो कुछ भी आपने सुना वो मेरी जिंदगी की कड़वी हकीकत है, जिस चाहकर भी कोई झुठला नहीं सकता। और अबीर साहब, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आपको कोई सफारी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको कोई कस्मे वादे किए ही नहीं, हमेशा आपको खुद से दूर रखने की कोशिश की है। अबीर खामोशी से सर झुकाए ज़ोया की एक एक बात सुन रहा था, लेकिन वो उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। वो उसी तरह गुमसुम सा बैठा हुआ था। ज़ोया ने कुछ देर खामोश अबीर को देखा और आगे बोलने लगी, और अबीर साहब, मेरी आपसे इतनी दोस्ती नहीं थी कि कुछ मुलाकातों में ही मैं आपसे अपनी जिंदगी का सच कह देती। वैसे देर आए दुरुस्त आए, आप सब कुछ सच तो जान ही गए हैं। तो अबीर साहब, अब मुझे पूरा यकीन है कि आपके सर से मोहब्बत का भूत अच्छी तरह से उतर गया होगा, क्योंकि एक इज्जत लूटी लड़की से लोग हमदर्दी जता सकते हैं, ज्यादा करेंगे तो उसे किसी नारी संगठन में भर्ती करा सकते हैं, लेकिन उसे अपने घर की इज्जत नहीं बना सकते। ये समाज है अबीर साहब, चाहे औरतों को कितना ही बड़ा दर्जा क्यों न दे दे, लेकिन जब किसी अनहोनी का शिकार हुई लड़की को अपनाने की बारी आती है तो ढेरों सवाल खड़े हो जाते हैं और आसपास के लोग बोलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, करनी है तो कुछ मदद ऐसे ही कर दो, इज्जत गवाई लड़की को अपने माथे मरने की जरूरत नहीं, ज़ोया ने लोकल भाषा में कहा और बोली, अबीर साहब, आप फिक्र न करें, हम लोग आज ही आपका घर छोड़कर चले जाएंगे, हमारी वजह से आपको और कोई परेशानी नहीं होगी। हो सके तो आप हम लोगों को भूल जाना और सोचना कि हम लोग आपकी जिंदगी में आए ही नहीं थे। और हाँ, अबीर राठौड़ साहब, एक और बात कहनी थी, आप हो सके तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेना, आप देखना, आपको मोहब्बत करने वाली लड़की जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर ज़ोया खड़ी हो गई और वो वापस जाने के लिए पलट गई, लेकिन दो चार कदम जाते जाते वो फिर से अचानक पलट गई और उसने देखा अबीर अभी भी ऐसे ही बुत बना हुआ बैठा हुआ था। उसकी जबान पर अभी भी एक भी शब्द नहीं था। तब ज़ोया आगे बढ़ी और एक बार फिर अबीर राठौड़ के सामने बैठकर बोली, अबीर साहब, एक और सच भी है जो शायद अकरम भाई आपको बताना भूल गए होंगे। अरमान की माँ गजाला जी ने अकरम और रिया को ऊपर से लेके नीचे तक देखा और बोली, आप दोनों कौन हैं? तब रिया ने कहा, जी, हम अरहम ठाकुर के बेहद करीबी दोस्त हैं। ओह, तब गजाला जी अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, क्या बताऊं बेटा, अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं आए हैं, पता नहीं कैसा होगा मेरा बच्चा। ऐसा कहकर वो एक झूठा मूठका रोना रोने लगी। गजाला जी की बात सुनकर रिया ने अकरम की ओर देखा। अकरम ने कुछ इशारा किया और वे दोनों बिना गजाला जी को सांत्वना दिए वहां पास में पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ गए। गजाला जी को उनकी बेरुखी देखकर काफी बुरा लगा। रिया को देखकर उन्होंने तो रोना इसीलिए शुरू किया था कि रिया उन्हें गले लगाकर सांत्वना देगी, लेकिन रिया ने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो भी अपनी नाक भौं चढ़ाकर बेंच पर बैठ गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि तभी दो डॉक्टर जो अरहम का ट्रीटमेंट कर रहे थे बाहर आए और गजाला जी उनके पास पहुंच गई और बोली, डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? तब डॉक्टर ने अंग्रेजी भाषा में कहा, मैडम अभी आपके बेटे की हालत ठीक नहीं है, हम 3 घंटे के बाद ही कुछ कह पाएंगे क्योंकि हमने उनके कुछ टेस्ट किए हैं, उनकी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, अभी वो बेहोश है। 3 घंटे तक अगर उन्हें होश नहीं आता है तब हम कुछ और मेडिसिन ट्राई करेंगे। डॉक्टर की सारी बातें रिया और अक्रम ने भी सुन ली थी और इससे पहले कि अक्रम कुछ कहता उसका फोन बज उठा था। फोन सुनने के बाद अक्रम के चेहरे पर कितने ही भाव आकर चले गए थे। तब उसने केवल ओके कहकर फोन रख दिया और अरमान की माँ गजाला जी से बोला, एक्सक्यूज मी आंटी, ये मेरे नंबर हैं, जैसे ही अरहम को होश आता है प्लीज इस नंबर पर कॉल करके जरूर बताइएगा। गजाला जी ने हाँ में सर हिलाया और अक्रम रिया को लेकर हॉस्पिटल से सीधा अबीर राठौड़ के मेंशन की ओर निकल गया था। वहीं दूसरी ओर मेहर अब काफी हद तक ठीक थी। अरमान ने तेजा को मेहर के साथ रहने के लिए कहा था, इसलिए तेजा मेहर को डिस्चार्ज कराकर सीधा ठाकुर मेंशन में ले आया था। मेहर ने जैसे ही ठाकुर मेंशन में कदम रखा उसे मेंशन की वीरानी महसूस होने लगी। मेहर ने अंदर कदम रखा और चारों ओर ध्यान से देखा। उसके बाद उसे राजवीर के किए हुए अत्याचार याद आने लगे। वो कभी किचन की स्लैब देखती तो कभी हॉल का सोफा, तो कभी ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ, तो कभी बाथरूम बेड, रह रहकर हर जगह जहाँ वो देख रही थी उसे राजवीर का किया हुआ जुल्म याद आने लगा था। मेहर ने राजवीर के लिए अब अपने दिल में इतनी कड़वाहट भर ली थी कि अब उसके बारे में सोचने भर से ही उसे घिंग आने लगी थी। तेजा मेहर को हॉल में पड़े सोफे पर बिठाकर वहाँ से जाने लगा। तभी मेहर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोका, तेजा भाई, तेजा भाई की जमानत कब तक हो जाएगी? कोई वकील मिला उन्हें? नहीं मैडम, सभी वकीलों ने बॉस का केस लेने से मना कर दिया है। अब हम लोग देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर मिस्टर हिमांशु राय से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो देश से बाहर है, वो कल रात को ही वापस आएंगे, उसके बाद देखते हैं उनका क्या जवाब होगा। तेजा एक काम करो, उस वकील का क्या नाम बताया तुमने? उसका हिमांशु राय। हाँ हाँ हिमांशु राय, उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। वो कल रात सीधा कहाँ जाएंगे? मैडम खबर मिली है वो एयरपोर्ट से सीधा अपने फार्म हाउस पर जाएंगे जो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो एक काम करो, कल रात की ही मीटिंग रख लो, और हाँ किसी को भी इस बात की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, भाई को भी, याद रखना। ठीक है मैडम, मैं अरेंजमेंट करता हूँ। ऐसा कहकर तेजा चला गया था और मेहर सोफे पर टांग रखकर बैठ गई थी और कुछ सोचने लगी थी। वहीं दूसरी ओर जोया ने अबीर के घर जाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जोया को लग रहा था कि अब और अबीर के घर रहना उनके लिए ठीक नहीं था। जोया ने सोचा था कि अक्रम और रिया को बिना बताए वो यहाँ से कहीं और चली जाएगी, वो अब अक्रम और रिया पर भी ज्यादा बोझ नहीं बनेगी। ये सोचकर जोया ने अपने सारे कपड़े और जरूरी कागजात लेकर बैग में रख लिए थे। जोया इस वक्त एक दूसरी कंट्री में थी, वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके कागज कितने ज्यादा जरूरी हैं उसके लिए। जोया ने सोच लिया था कि वो यहाँ से निकलकर किसी अनजान जगह पर रह लेगी और कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लेगी। जोया ने अरहम को तो अधमरा कर दिया था, लेकिन उसके अंदर का बदला, उसके अंदर की नफरत एक रत्ती भर कम नहीं हुई थी। उसे अब जल्द से जल्द पूरी तैयारी के साथ इंडिया जाना था और अरमान ठाकुर और राजवीर से अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब लेना था। जैसे ही जोया ने अपना सामान पैक करना शुरू किया था उसी वक्त इस बात की खबर अक्रम के एक आदमी ने उसे फोन पर ही दे दी थी। अक्रम ने अबीर के घर में अपना एक आदमी भी प्लांट कर दिया था, क्योंकि अबीर के घर पर तो नौकरों की फौज थी। ऐसे में अबीर के घर में काम करने वाले एक आदमी को रिप्लेस करना अक्रम के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। इसलिए जब वो हॉस्पिटल में था तभी उसे कॉल करके उसके आदमी ने जोया के बारे में बता दिया था। जल्दी ही अक्रम और रिया अबीर के घर पहुंच चुके थे और उन्होंने देखा कि जोया अपना सामान पैक किए हुए नीचे आ रही थी। अक्रम और रिया को देखकर वो रुक गई थी। तब अक्रम ने जोया से कहा, जा रही हो तुम? रिया ये सब क्या है? जोया दी, आप हम लोगों को बिना बताए कहाँ जा रही हैं? तब जोया ने अक्रम से कहा, भाई आपने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अब बस, और मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप लोग मुझे जाने दीजिए, मैं अब अपनी जिंदगी के इस सफर में अकेला चलना चाहती हूँ, और आप दोनों को मेरी कसम है आप लोग मुझे नहीं रोकेंगे। अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो आप लोग मेरा मरा मुंह देखेंगे। जोया के मुंह से ये बात सुनकर अकरम और रिया बेबस हो गए थे और वे उसे बेबसी से दरवाजे के बाहर जाते हुए देखने लगे थे। लेकिन जैसे ही ज़ोया बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला, उसी वक्त दरवाजे पर अबीर राठौर कई सारे पुलिस वालों के साथ वहां खड़ा हुआ था। ज़ोया पुलिस देखकर चौंक गई।